जमानों की उमंग बाब नंबर 27। अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। जितनी भी बीमारियों से मशरकी लोग वाकिफ हैं, कोर की बीमारी उन सब में हौलनाक बीमारी है। ये लाइलाज होने के साथ अपने शिकार पर खतरनाक असरात छोड़ती है। बहादुर से बहादुर शख्स भी उसके खौफ से लरज जाता है। यहूदा सोचते थे कि कोर की बीमारी किसी पर उसके गुनाहों के सबब से आती है, बल्कि वो कहते थे कि खुदा ने खुद अपने हाथ से गुनाहगार शख्स को छुआ है और कोर की बीमारी की सूरत में उस पर अदालत लाया है। चूंकि ये जल्द के नीचे ऐसी खतरनाक बीमारी होती थी जिसे खत्म नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसे गुनाह की अलामत करार दिया जाता था। रस्मी शरीयत के मुताबिक कोढ़ी को नापाक करार दिया जाता था। वो तो मुर्दा शख्स की मानिंद होता था जिसे जिंदों की जमीन से काट दिया गया हो। वो जिस चीज को छूता नापाक करार दे दी जाती। जिस हवा में सांस लेता वो हवा नजिस ख्याल की जाती। जिस शख्स के बारे शक गुजरता कि उसे कोढ़ का मर्ज है, उसके लिए लाजिम था कि वो काहन के पास जाए और वो उसका अच्छी तरह मुआयना करके बताए कि आया उसे कोढ़ का मर्ज है या नहीं। मर्ज तशखीस हो जाने की सूरत में उसे खानदान छोड़ना पड़ता और उसे बनी इसराइल की जमात से खारिज कर दिया जाता। मर्ज मालूम होने के बाद वो सिर्फ दूसरे कोढ़ियों के साथ जिंदगी के दिन पूरे कर सकता था, जिनको मुआशरे ने पेशतर ही आबादी से दूर रहने पर मजबूर कर रखा था। ये मरज खा बादशाह को लाहक होता, उसे भी अजीजो अकारिब तख्तो ताज और मुआशरे को छोड़कर वीरानों में पना लेनी पड़ती थी। कोढ़ के बारे कानून ला तब्दील था। अपने दोस्तों अहबाब और रिश्तेदारों से दूर कोढ़ी को कोढ़ की लानत के साथ गुजर बसर करना पड़ती थी। वो अपने कपड़े फाड़े रखता था और अपनी बीमारी के बारे चीख चीख कर नापाक नापाक का ऐलान करता रहता था। इस जलावतन का ये ऐलान बड़ा दिलदोज होता जो वो नोहा कुना आवाज में करता था, क्योंकि ये नोहा बड़े दुख और खौफ के साथ सुना जाता था। जिस इलाका में मसीह खिदमत अंजाम दे रहा था, बहुत से कोढ़ी थे। उन्होंने जब मसीह के बारे सुना कि वो हमारे इलाके में है, तो उनके दिलों में उम्मीद की करण फूट पड़ी। लेकिन चूंकि अलीशा के दिनों के बाद उन्होंने किसी को भी कोढ़ से शिफायाब होते न सुना था, इसलिए वो कोढ़ी मसीह से शिफा पाने की दरख्वास्त करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। लेकिन उनमें एक ऐसा शख्स था जिसके दिल में उम्मीद पैदा हो गई, मगर उस शख्स को यह मालूम न था कि किस तरह मसीह तक रसाई की जाए। मुआशरे से दुत्कारा हुआ शख्स किस तरह खुद को अजीम तबीब की खिदमत में पेश कर सकता है? उसने अपने दिल में यह भी सोचा होगा कि क्या मसीह मुझे शिफा बख्शना चाहेगा? क्या वो दूसरे तबीबों और फरीसियों की तरह ये ना कहेगा कि इंसानी आबादी से दूर भाग जाओ, तुम पर गुनाह के सबब खुदा की लानत है? इसके बावजूद उसे वो सब कुछ याद आया जो लोगों ने उसे यस्सु मसीह की बाबत बताया था। उसे बार बार बताया गया कि जो कोई उसके पास आया उसने उन्हें शिफा दी। बस उस बदनसीब शख्स ने तहिया कर लिया कि वो मसीह को जरूर मिलेगा। शहरों में से होकर वो गुजर नहीं सकता था, लिहाजा वो पहाड़ों की घाटियों से गुजरता हुआ उपसे जा मिला। उस वक्त येसु शहर के बाहर मुनादी कर रहा था। लोग उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। कोढ़ी ने दूर खड़े होकर उसका थोड़ा सा कलाम सुना। उसने उसे बीमारों पर हाथ रखते देखा। उसने देखा कि उसके कहने से लंगड़े चलने लगे, अंधों ने बीनाई पाई, अपाहज चौकड़ियां भरने लगे, जो करीबुल मर्ग थे सेहतयाब हो गए। उसने देखा कि हर तरह के मरीजों ने शिफा पाई, जिससे उसके दिल में ईमान और भी पुख्ता हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता येसु मसीह के करीब से करीबतर होता गया। उसने उन तमाम पाबंदियों को बालाए ताक रख दिया जो मुआशरे ने उस पर लगा रखी थीं, और उसके सर पर शिफा पाने का भूत सवार हो गया। वो देखने में करिया और हौलनाक था। उसके जिस्म को देखकर घुन आती थी। बीमारी ने उसका सुतियानास कर रखा था। दूर दूर तक उससे बदबू आती थी। उसे देखते ही लोग खौफ से पीछे हटने और उससे बचने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। बाज ने कोशिश की कि वो यसु तक पहुंचने न पाए, मगर यह सब कुछ बेसूद रहा। उसे ये ख्याल ही न रहा कि कोई और भी यहां है, क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ यसु पर लगी थीं। वो तो सिर्फ उसकी आवाज सुन रहा था जो मर्दों को जिंदगी अता कर रहा था। वो आगे बढ़ा और यसू के कदमों में गिरकर कहने लगा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यसू ने जवाब में उससे कहा, मैं चाहता हूं तो पाक साफ हो जा। मत्ती 2:8-3। फौरन कोढ़ी के बदन में तब्दीली वाकई होना शुरू हो गई। उसकी जल्द सेहतमंद हो गई और उसकी नसों में महसूस करने की कुव्वत बेदार हो गई। उसके पट्ठे पुख्ता और मुस्तहकम हो गए। उसका जिस्म जो खस्ता खराब हो चुका था, कोढ़ से पाक साफ हरकर बच्चे के बदन की मानिंद हो गया। जो कोढ़ी शिफा पा गया था, उसे यसु मसीह ने हिदायत की कि इस काम के बारे किसी को न बताना, बल्कि सीधा हैकल में जा और काहन के सामने खुद को हदिया के साथ पेश करो। इस तरह का हदिया उस वक्त तक कबूल नहीं किया जाता था जब तक काहिन पूरी तरह बीमार का मुआयना करके ऐलान न कर दे कि ये शख्स कोढ़ के मर्द से पाक साफ हो गया है। यसु ने उससे कहा, खबरदार किसी से न कहना, बल्कि जाकर अपने 3 काहन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। मत्ती 4:8। अगर काहन कोढ़ी के शिफा पाने के हकायक से वाकिफ हो जाते तो उनकी नफरत यसु के लिए मजीद बढ़ जाती और उसे बेइंसाफी का शिकार बनाते। इसलिए यसु ने चाहा कि उससे पहले कि इस मौजजा की खबर उधर उधर फैले, वो अपने आप को काहन के सामने पेश करे और उसके मुआयना करने के बाद ये कोढ़ी अपने दोस्त और अहबाब और अजीजों से मुलाकात करे। बहुत बड़ी भीड़ कोढ़ी के शिफा पाने के वाकया की गवाह थी, जो कान के फैसले का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। जब वो शख्स अपने दोस्तों के पास वापस आया तो उन्हें बड़ी खुशियां मनाई गईं। ताहम मसीह की हिदायत के बावजूद कोढ़ी ने सबको उस हकीकत से आगाह किया कि यीशु ने उसे शिफा बख्शी है। वो अजीम तबीब की शिफा बख्श कुदरत की हर जगह गवाही देने लगा। उसे ये मालूम न था कि उसकी इस तरह की गवाही काहनों और कौम के बुजुर्गों को यीशु की जान लेने के लिए उकसा सकती है। कोढ़ी ने महसूस किया कि सेहत तो खुदा की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। वो इस बात पर शादा था कि वो एक तवाना मर्द है। उसे खानदान और सोसाइटी में बहाल कर दिया गया है। वो ये सोचता था कि ऐसे तबीब का शुक्रगुजार न होना बद अखलाकी है, मगर ये यीशु की खिदमत में रुकावट का बायस बना। उसकी गवाही के सबब उसके पास चारों तरफ से इतने लोग जोक दरजोक आने लगे कि थोड़ी देर के लिए उसे अपनी खिदमत के काम को बंद करना पड़ा। यस्सू के जाहिरी कामकाज या अमल में भी बड़ी मसलहत पोशीदा होती थी। यही कोढ़ी के मामला में हुआ। यस्सू के पास जो कोई आया, उसने उन्हें नामुराद वापस न लौटाया। उसकी तमन्ना थी कि उनको भी बरकात दे जो उसके पास नहीं आए। जब उसने महसूल लेने वालों, बुतपरस्तों और सामरियों को अपने पास बुलाया, उसी दौरान उसने काहनों और कौम के असातिजा को भी अपने पास खींच लाने का हर हरबा इस्तेमाल किया। फरीसी गुमान करते थे कि जो तालीम यस्सु मसीह देता है वो खुदा की शरीयत के बरक्स है जो उसने मूसा के जरिए दी। मगर उनके उस इल्जाम की उस वक्त तर्दीद हो गई जब उसने कोढ़ी को मूसा की शरीयत के मुताबिक काहन के पास नजर लेकर जाने की हिदायत की, और ये उन सब के लिए जो कायलियत की रूह रखते थे वाज़ह सबूत था। यरूशलेम के रहनुमाओं ने जासूस भेजे ताकि यस्सु की तालीम में से कोई ऐसी चीज ढूंढे जिसकी बिना पर उसे मौत के घाट उतारा जाए, मगर मसीह ने यहां उन्हें सबूत फराहम किया कि वो बनी नौ इंसान से किस कदर मोहब्बत रखता है, नीज शरीयत का किस कदर एहतराम करता है। उसके बावजूद वो बदी पर तले रहे। उन्होंने नेकी के बदे मुझसे बदी की और मेरी मोहब्बत के बदे अदावत। 5:109। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और सताने वालों के लिए दुआ करो। मत्ती 44:5। बदी के एवज बदी न करो और गाली के बदले गाली न दो, बल्कि उसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस हो, उसके लिए बुलाए गए हो। पत्रस 9:3। वही काहिन जिन्होंने उस पर पाबंदियां लगाई थीं, उन्होंने ही उसकी शिफायाबी तस्दीक की। ये ऐलान यस्सु मसीह के हक में बड़ी गवाही थी कि वो ज़ाते इलाही है। वो शख्स जब खानदान और कलीसिया में बहाल हो गया और काहिनों ने तस्दीक कर दी कि उसके बदन में जरा भर भी बीमारी नहीं, तो वो मसीह के लिए जिंदा चलती फिरती गवाही बन गया। खोची से उसने नजर गुजरानी और यस्सु नाम की बड़ाई की। काहिन इलाही कदरत के कायल हो गए। अब उनके पास मौका था कि वो सच्चाई को कबूल करके फायदा उठाते, रद्द करने को
सूरत में उनसे ये मौका हमेशा हमेशा के लिए चला जाता। बहुतों ने नूर को तर्क कर दिया, ताहम उस वक्त जिन्होंने किसी रद्देअमल का इजहार ना किया बाद में उनके दिल असर पजीर हो गए। बहुत से काहिनों ने भी बाद में मसीह कबूल कर लिया। यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया और काहिनों की बड़ी गवाही इस दीन के तहत में हो गई। आमाल 7:6। मसीह यीशु का कोड़ी को होलनाक बीमारी से शिफा देने का अमल रूह को गुनाह से पाक करने की अलामत है। वो शख्स जो यीशु मसीह के पास आया कूड़ से भरा पड़ा था। कूड़ का जहर उसके पूरे बदन में सिरायत कर गया था, यहां तक कि शागिर्द यीशु को रोकने की कोशिश में थे। वो कोड़ी को ना छुए क्योंकि वो नजस था, मगर कोड़ी को छूने के बावजूद मसीह नजस ना हुआ, बल्कि उसके छूने से कोड़ी ने जिंदगी की कुव्वत पाई। गुनाह के कूड़ का भी यही हाल है, इंसान उसे अपनी कुव्वत से दूर नहीं कर सकता। ये बहुत खतरनाक और गहरे घाव की मानिंद है। तमाम सर नयमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है। तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं। जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं जो न दबाए गए, न बांधे गए, न नर्म किए गए। यसाइया 5:8-6। मगर मसीह यीशु हम इंसानों में आया ताकि हमारे दरमियान सुकूनत करे और उन सबको शिफा बख्शे जो उसके पास आकर कहे, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। ऐसा शख्स उससे ये जवाब पाएगा, मैं चाहता हूं तो पाक साफ हो जा। मत्ती 2:8-3। शिफा बख्शने के बाज वाकयात में मसीह ने फौरन करम नवाजी ना की, मगर हम देखते हैं कि कूड़ के मरीज ने जिस वक्त गुजारिश की उसकी दरख्वास्त कबूल हो गई। इसी तरह जब हम इस दुनिया की बरकात के लिए दुआ मांगते हैं तो दुआ के मुस्बत जवाब में देरी हो सकती है, या जो कुछ हमने दुआ में मांगा है उसके इवज खुदा हमें कुछ और ही दे दे। मगर गुनाह की माफी के लिए ऐसा नहीं। जब हम गुनाह से रहाई के लिए मिन्नत करते हैं तो फौरन जवाब देता है। ये उसकी मर्जी है कि हम गुनाह से नजात पाएं। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुवाफिक हमें इस मौजूदा जहान से खलासी बख्शे। गलतियों 4:1। और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुवाफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। 1 यूहन्ना 14:5-15। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। 1 यूहन्ना 9:1। कुफ्र नहूम के मफलूज को शिफा बख्शने में यीशु ने दोबारा वही सच्चाई सिखाई। यीशु ने इस मोजज़े के जरिए भी गुनाह के माफ करने की कुदरत को आश्कार किया। इस मोजज़े में पूरी तरह उम्मीद और हौसले का उनसुर मौजूद था। कोड़ी की तरह इस मफलूज के लिए भी तंदुरुस्ती की तमाम राहें और उम्मीदें मसदूद हो गई थीं। उसकी बीमारी गुनाह का नतीजा था और गुनाह का पछतावा उसे घुन की तरह खाए जा रहा था। उसने फरीसियों और हकीमों से बारहा इल्तिजा की थी कि उसे जिस्मानी और रूहानी दुखों से निजात दिलाएं, मगर उन्होंने उसे बार बार यही ही बताया कि तेरी बीमारी ला इलाज है, क्योंकि तेरी गुनाहों के सबब खुदा तुझ पर यह बीमारी लाया है। मगर फरीसियों में बहुत से ऐसे भी मौजूद थे जो उस गुनाहगार से कहीं ज्यादा गुनाहगार थे, मगर खुद को मुकद्दस ख्याल करते थे। मफलूज आदमी कुल्ली तौर पर बेबस था, वो चारों तरफ से मायूस हो चुका था। तब उसे खुदावंद यीशु के अजीत कामों की खबर मिली। उसे यह भी बताया गया कि उसने गुनाहगारों और लाचारों को भी शिफा बख्शी है, यहां तक कि उसने कोढ़ियों को पाक साफ किया है। और वो दोस्त जो ये खबर लेकर उसके पास हाजिर हुए थे, उन्होंने उसकी हिम्मत बनाई कि वो भी ईमान रखे कि यीशु उसे शिफा बख्शने पर कादिर है। लेकिन एक दफा वो फिर ये सोचकर बेदिल हो गया کہ اس کی یہ بیماری خود اس کی غلطکاریوں اور گناہوں کے باعث اس پر آئی ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ مقدس طبیب مجھ نجس شخص کو اپنے حضور ٹھہرنے نہ دے گا، مگر وہ جسمانی تندرستی کا اتنا متمنی نہ تھا جتنا گناہوں کی معافی کا۔ اب اس کی صرف یہ خواہش تھی کہ وہ یسوع کو دیکھ لے اور اس سے گناہوں کی معافی حاصل کر لے، اس کے بعد خواہ مرے خواہ جیے۔ لہذا اس قریب المرگ شخص کی ایک ہی تمنا تھی کہ وہ فوراً یسوع کے حضور پہنچے۔ وہ مزید دیر نہیں کر سکتا تھا، اس کے خستہ بدن سے پہلے ہی تعفن اٹھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کی منت کی کہ اسے چارپائی پر ڈال کر یسوع کے حضور پہنچا دیں۔ دوستوں نے بخوشی اس کی اس درخواست کو قبول کر لیا، مگر اس گھر میں بہت زیادہ بھیڑ تھی جس کے سبب سے مفلوج کو یسوع کے حضور پہنچانا ناممکن ہو گیا۔ وہ اسے اتنی نزدیک بھی نہ لے جا سکے جہاں سے وہ یسوع مسیح کی آواز سن سکتے۔ یسوع پطرس کے گھر میں تعلیم دے رہا تھا۔ دستور کے مطابق اس کے شاگرد اس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے۔